संत हूँ के दान में पेज नंबर 31 पर ये प्रश्न है, उसका उत्तर अपन को देखना है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि सम्यक दृष्टि और केवली की ज्ञान चेतना में क्या अंतर है। मैंने ज्ञान चेतना तो दोनों को ही स्वीकार की है, केवली की भी और सम्यक दृष्टि की। और कल जयचंद जी छाबड़ा ने के भाभाष जो अपन ने पढ़ा था तो उसमें वहां सम्यक दर्शन से शुरू की थी ज्ञान चेतना को और केवल ज्ञान पर जाकर के समाप्त किया था। तो सम्यक दर्शन प्राप्त होकर और फिर केवल ज्ञान तक कैसे पहुंचता है, और सम्यक दर्शन के पहले आगम ज्ञान से, गुरु के मुख से, तर्क से, युक्ति से आत्मा को जाना जाता है और उसके बाद में आत्मा का अनुभव होता है। तो सम्यक दृष्टि की ज्ञान चेतना में और केवली की ज्ञान चेतना में फर्क क्या है? केवल ज्ञानी जीव के साक्षात ज्ञान चेतना होती है। केवल ज्ञान होने से पूर्व भी निर्विकल्प अनुभव के समय जीव के उपयोगात्मक ज्ञान चेतना होती है। जब वो अनुभव करता है तब उसके ज्ञान चेतना होती है। ये दो बातें तो नक्की होंगी पक्की, केवल ज्ञानी के है और अनुभव के कार्य में उसके है। अब यदि ज्ञान चेतना के उपयोगात्मकत्व को मुख्य न किया जाए, मैंने एक अपेक्षा ये भी होती है कि उपयोगात्मक नहीं, बस उसकी श्रद्धा के लेवल पर है ना और लब्धि के लेवल पर, कि मैं तो ज्ञान चेतना स्वरूप हूं, कर्म और कर्म फल चेतना रूप नहीं हूं, तो सम्यक दृष्टि के ज्ञान चेतना निरंतर होती है। यानी एक अपेक्षा ये भी है जब आपको करने धरने के विकल्प आ रहे हैं, और वो साधारण नहीं है, वो विकल्प ऐसे हैं कि हम जगत में अज्ञानियों से भी ज्यादा प्रबल दिखाई देते हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती आदि के बाहुबली पर चक्र चला दिया, और भी हमारी बात आपको मानना ही पड़ेगी, इस तरह के कर्तृत्व के उपभोक्तृत्व के तीव्रतम विकल्प हों। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना नहीं होती, तब भी मैंने श्रद्धा के लेवल की ज्ञान चेतना को ये जगत को स्वीकार कराना बहुत कठिन काम है, क्योंकि उसका निरंतर ज्ञान के स्वामित्व भाव से प्रणमन होता है, कर्म के और कर्म फल के स्वामित्व भाव से प्रणमन नहीं होता है। अब एक स्वामित्व भाव से माने श्रद्धा, श्रद्धा में कि मैं, ये मेरी है, ये मैं हूं, एकत्व ममत्व। ज्ञान चेतना में उसका अपनत्व रहता है और कर्म और कर्म फल चेतना में उसका अपनत्व नहीं रहता है। कि अभी बराबर वो कोई आदेश दे रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सब है ना। फिर कोई आदमी उससे कहता है कि देखो साहब, आपने तो बहुत कड़काई से कह दिया, लेकिन वो इतना काम संभव नहीं है, वो जितना होगा उतना ही हो पाएगा। तो मैं सब जानता हूं, तुम चुप रहो, मैं सब जानता हूं। मैंने कहा जब मैं इतना कहूंगा तो ही उतना होगा, मैं ये जानता हूं, और उतना हो जाएगा तो मेरे को संतुष्ट रहूंगा। कहने का अर्थ है कि उसी श्रद्धा के लेवल पे अपन भी ऐसा अनुभव कर लेते हैं ना, देख लेते हैं कि भाई क्या बात है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि सम्यक दृष्टि के केवल ज्ञान होने के पहले भी ज्ञान चेतना होती है, और केवल ज्ञान होने पर उसे साक्षात ज्ञान चेतना होती है। तो इतना भेद डाला, उसका नाम रख दिया हमने साक्षात ज्ञान चेतना। सम्यक दृष्टि को जो होती है उसकी दो अपेक्षाएं, एक तो अनुभव के काल में और एक निरंतर। अनुभूति के बारे में भी अपन ने अनुभव के बारे में भी पहले समझाया था, एक तो वो अनुभव जो अनुभूति के काल में होता है, और दूसरा वो कि जो अपन कहते हैं ना 10 साल का अनुभव एमए क्लास पढ़ाने का है, इन्हें ऐसा बोलते हैं ना, तो उसे भी अनुभव बोलते हैं। उसकी श्रद्धा निरंतर कायम रही है ना, और ये सारा प्रकरण श्रद्धा के लेवल का है, इसलिए कहते हैं कि सम्यक चौथे गुणस्थान से लेकर ऊपर ज्ञान चेतना ही है और अज्ञान चेतना, क्योंकि कर्म और कर्म फल चेतना को तो अज्ञान चेतना कहते हैं। अब फिर जो देखेंगे वो बाहर में विकल्प हो रहे, वो तुम कह रहे वो उन्हें विकल्प नहीं होता है, तो कैसे निर्विकल्प हैं? तो वो विकल्प जो हो रहे वो चारित्रों के संबंधी हैं, और हम जो निर्विकल्प बता रहे हैं वो दर्शन मोह संबंधी है। ये अंतर जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक इन प्रश्नों का कभी जवाब हमें नहीं मिलेगा। बनारसी दास जी का छंद पढ़ो, देखो क्या लिखा है इनमें।
जहाँ शुद्ध ज्ञान की कला उदोत दिसे तहाँ शुद्धता प्रवान शुद्ध चारित को अंश है। ताकारण ज्ञानी सब जाने गे वस्तु मर्म वैराग विलास धर्म वाको सर्वंश है। राग दोष मोह की दशा सो भिन्न रहे याते सर्वथा त्रिकाल कर्म जाल को विध्वंस है। निरुपाधि आत्म समाधि में विराज ताते कही ये प्रकट पूरन परम हंस है।
उसी बात को उन्होंने बांधा है छंद में कि जब जहाँ शुद्ध ज्ञान की कला का उद्योत होता है, चंद्रमा की कला होती है ना दोज से लेकर के और पूर्णमासी तक, और फिर 16 कलाएं मानी जाती हैं। तो 16 कौन कौन हुई? दोज से लेकर के पूर्णमासी तक तो 14 ही होती हैं। तो एक अमावस की कला है वो भी है, और एकम की भी है वो भी है, लेकिन इन दो को दोज से क्यों शुरू करते हैं? देखो मुसलमान भी जब उनको दोज का बीज का वो चंद्रमा दिख जाता है ना, तब वे अपने उपवास भंग करते हैं, क्या मनाते हैं, ईद वीद मनाते हैं, क्योंकि वो एकम का दिखाई नहीं देता। माने वो खुल तो जाता है, पूर्ण अमावस जैसा पूरा लोक तो नहीं रहता, इसलिए 16 कलाएं मानी गई। कौन कौन सी? 15 दिन की 15 और एक अमावस की। तो अमावस की का और एक पूर्णमासी की, मतलब ये अमावस और पूर्णमासी, एक पूरा घना अंधकार और एक पूरा प्रकाश, तो दो तो ये पूर्णता वाली हो गई और बाकी सब कम ज्यादा हो गई। अभी आपने शायद चंद्रमा के बारे में कुछ ज्यादा कभी विचार नहीं किया होगा, लेकिन उसका एक एक दिन का एक एक मिनट का ये स्वरूप स्थित होता है। कैसा? एक कितना खुला रहेगा, अब कभी इतना कम खुलेगा अगर ज्यादा खुलेगा। देखो सवाल उसका नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूं कि जैसे वो एकदम ऐसी गोल चीज है ना, तो इतना हिस्सा खुला है, लेकिन कब वो इधर को खुला है और कब इधर खुला है, समझ में आई? ऊपर नीचे माने वो खुलावट बराबर होने पर भी दोनों की दिशा में बहुत बड़ा अंतर होता है, माने दो एक सी नहीं होती है। और ये ज्योतिषी लोग उसके आधार पर शुभ अशुभ का भी निकालते हैं। मुसलमान लोग तो बहुत बीज के चंद्रमा को ये देखते हैं कि दो नौके हैं ना, कभी देखा है बीज का चंद्रमा? दो नौके हैं तो इसमें कौन सी ऊपर है और कौन सी नीचे है, उसके आधार पर भविष्य का नक्की करते हैं। क्या सर्दी आएगी, व्यापार में फायदा होगा, नुकसान होगा, लाभ होगा, हानि होगी। अपन माने वो दोज के दिन ये पोजीशन होती है कि डिसीजन करना बहुत कठिन होता है। क्या? कि ये वाला हिस्सा ऊंचा है कि ये वाला ऊंचा है, लेकिन उनमें दो में से एक ऊंचा होता ही है और एक नीचा होता ही है। लेकिन रोजी ना उसकी 16 कलाएं माने चंद्रमा रोजाना अलग रूप में आता है इसका, इसलिए उसे सोलह कलाएं बोलते हैं। तो जहां शुद्ध ज्ञान की कला का उद्योत होता है वहां पर शुद्धता प्रमाण माने शुद्धता के अनुसार, प्रमाण माने परिमाण, शुद्धता के नाप में शुद्ध चारित्र को अंश भी प्रकट होता है। जैसे कि चंद्रमा में कुछ हिस्सा प्रकट रहता है कुछ हिस्सा अप्रकट रहता है। यदि आप बारीकी से देखेंगे तो जो अप्रकट हिस्सा अपन कहते हैं ना जिसे, वो भी दिखता है। मैंने आपको उस वक्त पूरा चंद्रमा दिखता है और ये प्रकाशित होता दिखता है और वो अप्रकाशित होता दिखता है। जिसके बाद अमावसानी होती है उस दिन की अष्टमी का चंद्रमा बिल्कुल अलग टाइप का होता है, और जिसके बाद पूर्णमासी आनी है उस दिन के चंद्रमा की स्थिति अलग होती है, दिशा बदल जाती है। अमावस के पहले जो चतुर्दशी आती है उसमें, और पूर्णमासी के पहले जो चतुर्दशी आती है उसमें, उसमें तो महान अंतर होता है, ख्याल में है ना। पूर्णमासी के पहले चतुर्दशी आती है उसमें लगभग खुला रहता है, बहुत कम हिस्सा दबा रहता है, और अमावस के पहले आती है तो बहुत कम खुला रहता है और बहुत बड़ा हिस्सा दबा रहता है। और इसलिए आपको अष्टमी के बाद की जो पोजीशन में तो बहुत अंतर दोनों में दिखाई दे जाएगा, लेकिन अष्टमी में बिल्कुल आधा आधा वो दबा रहता है और आधा खुला रहता है, लेकिन उसकी दिशा नक्की होती है। एक ऐसा आधा खुला है कि ऐसा आधा खुला है। आप जानते हैं कि दिनों रात इस सूरज की गति के आधार पर नक्की होते हैं, चंद्रमा के आधार पर नहीं होते हैं। और महीना और पक्ष ये चंद्रमा की गति के आधार पर नक्की होते हैं, समझे। चंद्रमा की जो चाल है उसके आधार पर शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष और किसके, इसका निर्णय चंद्रमा की गति के आधार पर होता है। फिर तो मास का और पक्ष का इसके हुए ना, फिर उसके बाद में क्या आता है, अयन है ना। अयन क्या होता है कभी सुना, ये अपन बोलते हैं दक्षिणायन उत्तरायन, वो अयन है मूल शब्द में, तो दक्षिण की तरफ और उत्तर की तरफ, तो ये सूरज के आधार पर नक्की होता है। छह महीना का दक्षिणायन और छह महीना का उत्तरायन, तो सूरज आप देखिए दक्षिणायन में यहां से वो तो ऐसा जाता है ना, तो ऐसा जाएगा, और तो उत्तरायन में जाएगा तो ऐसा जाएगा, समझिए ना। तो आप अपने घरों में देखते होंगे कभी कि यदि आपका दक्षिण की तरफ खुलावट है आपके मकान में, तो दक्षिणायन के दिनों में आपके घर में धूप आएगी और उत्तरायण के दिन में नहीं आएगी। अब दक्षिणायन के समय माने होती, दक्षिणायन का समय होता है सर्दियों का, उत्तरायण का होता है गर्मियों का, तो सर्दियों में धूप अच्छी लगती है, समझिए। वो यदि हमारा दक्षिण का बिल्कुल वैसे दरवाजा तो दक्षिणायन नहीं चाहिए, लेकिन खुलावट चाहिए तो उसमें धूप आएगी, और उत्तरायण में तो ना गर्मियों में धूप नहीं आएगी तो बहुत अच्छा है ना, धूप नहीं आवे तो अच्छी बात है ना। तो इस तरह से इनकी गति होती है। तो अयन माने उत्तरायण और दक्षिणायन, छह महीने का निर्णय फिर कैसे होता है, सूरज से। अब दिन का निर्णय भी सूरज से और छह छह महीनों का निर्णय भी सूरज से, और पंद्रह दिन पक्ष और मास का निर्णय चंद्रमा से। फिर ऐसे ही आगे का सारा हिसाब चलता है, जैसे कि इस सूरज की गति 365 दिन में 365 तरह की होती है, और वो बता देते हैं ज्योतिषी कि फला तारीख को इतना बजे जयपुर में इतना बजे सूरज उगेगा, जबलपुर में इतना बजे उगेगा, बंबई में इतना बजे उगेगा। एक एक दिन का सब जगह का नक्की होता है। ऐसा चंद्रमा का भी होता है। फिर आगे के जो निर्णय होते हैं उसे को मान लो पत्र का आपने देखी होगी जिसमें चांद्र मास महीने को चांद्र चंद्रमा संबंधी महीना ऐसा लिखा रहता है, चांद्र मास कहते हैं उसे। फिर जैसे एक बरस तक का मैंने आपको बताया ना, फिर ऐसा शताब्दी का भी होता है, दशाब्दी का भी होता है। फिर ऐसे ऐसे यानी प्रकृति हमें कहते हैं ना दोहराती है, लेकिन वो दोहराने का नियम कब कब कैसा क्या होता है उसकी जितनी अधिक जानकारी आपको है उतना अधिक ज्योतिष ज्ञान आपको है। और एक ये और दूसरी कि उनके साथ में इस जगत के मौसम वगैरह का भी बहुत जुड़ान है, और मौसम के हिसाब से फिर व्यापार आदि का इसमें एकदम ज्यादा वो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो वो उसके हिसाब से सब निकलता है। ये पूरा विज्ञान है। अब इंडियन ने उसे अपने तरीके से विकसित किया, वेस्टर्न वालों ने अपने तरीके से विकसित किया, लेकिन अंत में सबको वहीं आना पड़ता है। जैसे कि एक बरस कितने दिन का होता है, 365 दिन का होता है। अब हिंदुओं ने 30 दिन का महीना माना, तो 360 दिन होते हैं। अब ये 5 दिन क्या होगा, होगा तो 365 का ही। तो ये 5 दिन को हर महीने में एडजस्ट करते हैं। कभी कहेंगे कि ये लुप्त हो गई, कभी कहेंगे 2 अष्टमी हो गई। तो उनके यहां नियम है कि 60 घड़ी का के 24 घंटे होते हैं ना, तो उसमें जिस दिन वो 30 घड़ी से ज्यादा दिन होगा तो उस दिन के वो माने जाएंगे। मान लो 30-30 से बराबर, फिर 2 अष्टमी हो जाएंगे, मतलब फिर 2 सप्तमी हो जाएंगे। और यदि जो कम ज्यादा होगा तो उसका फिर वहां एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कहीं स्थिति का क्षय हो गया। अब इन्होंने अंग्रेजों ने पहले से ही सेट कर दिया कि जनवरी 31 महीने की, फरवरी 29 की, 28 की, फिर मार्च 31 का, फिर अप्रैल 30 का, फिर मई 31 का, माने वो हर महीने में एडजस्ट करते जाते हैं अपना। और ऐसे 365 दिन उनके वो हो जाते हैं। अब वो 365 में भी थोड़ा कम ज्यादा होता है, तो जी तो वो भारतीय तो ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। और वे फिर वो कहते हैं कि हर चौथे साल 29 दिन की फरवरी होती है, तो वो 4 साल में जाके उसे एडजस्ट करते हैं। मतलब विज्ञान तो वही का वही है, लेकिन उन्होंने अपने अलग तरीके से किया, इनने अलग भी। दिक्कत क्या है कि नक्षत्रों के आधार पर नक्की होता है। दिन है 30 और नक्षत्र है 27, तो इसलिए रुक जाना ही, वो नक्षत्र कितने बजे से कितने बजे तक है बोल देना, फाल्गुनी नक्षत्र इस तारीख से इतने बजे, इतने बजे से इतने बजे है। मैंने ज्योतिष भी बहुत पढ़ा था पहले, कभी काम में नहीं लिया, कहते समझ गया ना, तो वो उसमें एडजस्ट होता है, बढ़ता जाता है। इस महीने में कितना कौन सा नक्षत्र गया, कैसे गया, आया गया, और वो सब उसमें लिखा रहता है। इस तरह से कई कई लगे 28 नक्षत्र और मान लिए हैं। तो इन ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये सब चीजें से व्यवस्थित होती है ना। तो यहां तो उन्होंने सिर्फ उदाहरण दिया है, कला का चंद्रमा किया। जहां शुद्ध ज्ञान की कला उदेत दिशे तहां शुद्धता प्रमाण शुद्ध चारित्र को अंश है। जैसे चंद्रमा की कला में है, ऐसे ही चारित्र में भी नक्की है कि जब सम्मा दर्शन शुरू होगा तो चारित्र का अंश भी प्रकट होगा। और फिर वो चारित्र का अंश 14 अनुष्ठान तक किस किस तरह कहां कहां कैसा बढ़ता जाएगा, एक बिल्कुल उसके अनुसार वो सारी पद्धति है। तो जैसे कि अपन ने कहा ना कि अमावस के दिन चंद्रमा होता ही नहीं, और एकम के दिन दिखता नहीं है तो नहीं होता ही जैसा मान लिया, दोष से ही गिनते हैं। देखो गुरुदेव श्री एक बात कभी उनके प्रवचन में तुमने ध्यान से सुनी हो तो गुरुदेव लोगों ने तो सुनी ही होगी कि बीज उगी छे तो पूर्णमासी थसे थसे पण थसे नहीं आया था मैंने कि यदि दोज उगा है चंद्रमा तो वो पूर्णमासी गारंटी से आएगी लेकिन ये कब सुदी में सुदी समझते हो शुक्ला में शुक्ला माने सफेद क्योंकि ज्यादा रहेगी ना रात चांदनी रात इसलिए तो चंद्रमा उगा है तो नियम से बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी में बदलेगा तो बीज बोलते थे सम्यक दर्शन को और फिर वो पूर्णमासी बोलते थे काय को केवल ज्ञान को यानी सम्यक दर्शन हुआ है आत्मा की अनुभूति हुई है तो उसे एक दिन केवल ज्ञान अवश्य होगा। अभी उसमें जे कब की बात है शुक्ला की इस शुक्ला की बात है मतलब ये अमावस के बाद वाली बीज की बात है। अब पूर्णमासी का उल्टा होता है कि पूर्णमासी की जो बीज आती है दो जाती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अब एक भाग्य की बात है वो भी कह ही देता हूं कि पूज्य गुरुदेव श्री की जो जन्म तिथि है वो तो है शुक्ला की शुक्ला समझ गया ना कि जो दो दोज उगकर पूर्णमासी में बदलेगी और फिर एक डेढ़ महीने बाद आती है बहन श्री की तो वो है कृष्णा की समझ में आ रहा। तो जब गुरुदेव वो बात कहते थे ना तो वो तो उनने कभी नहीं कही हैं? लेकिन एक कहते थे तो लोगों को तो रस आता है ना कि यहां से ज्ञान की किरण होगी है फिर केवल ज्ञान में जाके बदलेगी हैं? और यहां एक अंधकार होगा है तो अंधकार का क्या होगा। एक बात और कहूं आपको गुजराती और हिंदी में अंतर समझते हो तो गुजराती में अमावस के दिन महीना पूरा होता है और हिंदी में पूर्णमासी के दिन महीना पूरा होता है। कही मानो जैसे कि अभी अपना क्या चल रहा है अभी छोड़ दो मान लो कि अपने जो रक्षाबंधन आता है ना तो श्रावण सुदी पूर्णमासी के दिन आता है ना अपन उसे श्रावण बोलते हैं और वे उसे भादव बोलते हैं। उनका महीना अमावस को पूरा हो जाता है ना पंद्रह दिन के लिए तो ये चक्कर पड़ता है हमेशा कि पूरा महीना कब होगा। तो वो ये कहते हैं कि दिवाली के दिन से शुरू हुआ बरस और अगले साल दिवाली को बरस खत्म होगा तो वो फिर अमावस के बाद ही शुरू हुआ ना उसे बोलते हैं वो बेस्ता बरस गुजरात में क्या बोलते हैं क्या अब बरस बैठा है। तो दिवाली के दूसरे दिन को क्या बोलते हैं तुम तो समझते हो ना गुजराती लोग बेस्ता बरस है तो वो बेस्ता हुआ बरस। और हिंदी वाले नहीं मानते हैं अमावस को वो नया साल समझेंगे ना तो वहां क्या होता है कि गुरुदेव ये बोलते थे कई दफे अपने प्रवचनों में आप लोगों ने सुना हो क्या नहीं कि हिंदी वाले सही हैं गुजराती वाले सही नहीं हैं। और वो तर्क ये देते थे कि देखो उसका नाम है अमावस अमावस माने अर्धमासी और पूर्णिमा माने पूर्णमासी अपन बोलते भी है ना तो उसने साफ शब्द लिखा है पूर्णमासी कि महीना पूरा हो गया समझे ना और अमावस को अर्धमासी लिखा है अमावस को अर्धमासी लिखा है और उसको पूर्णमासी लिखा है इसलिए हिंदी वालों की बात सही है, समझ तो इसलिए अच्छा उनके दोनों की सुदी माने शुक्ला एक होती है और कृष्णा में अंतर होता है एक महीने का। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अपन तो मानते कृष्णा आई पहले, चैत कृष्णा पहले आई और चैत की शुक्ला आएगी बाद में। अब वे क्या मानते कि चैत की अपनी शुक्ला शुरू होती है, शुक्ला से शुरू हुआ तो उनका महीना 15 दिन बाद शुरू होता है, तो 15 दिन बाद शुरू होगा या 15 दिन बाद खत्म होगा, 15 दिन बाद शुरू होगा तो 15 दिन बाद खत्म होगा। तो ये भाग्य की बात है कि पूज्य गुरुदेव की तो सुधि है, वैसाख सुधि दो, तो वो तो दोनों की एक होती है, तो अपने कहते थे हाँ अक्षय तृतीया आई, तीज की आई और सुधि की गुरुदेव की, तो हिंदी वाले और गुजराती वाले में कोई चक्कर नहीं पड़ता है। लेकिन जिसकी बदी की होगी तो अपन बोलते हैं भादो बदी दोज, को भैंसी की जयंती है तो वे बोलेंगे श्रावण बदी दोज। अब समझ ना, अपने यहां वो भादो बोलते हैं और तुम्हारे यहां श्रावण बोलते ना, तो भैंसी का जन्म श्रावण बदी दोज को है और अपने यहां श्रावण बदी दोज गिनेंगे तो फिर एक महीना पहले हो जाएगी। अब कहां कहां क्या क्या परंपराएं कैसे चली, लेकिन जो चीज से अपन प्रभावित होते हैं उतना उसका ज्ञान तो उतना तो होना चाहिए ना। आपको सामान्य जानकारी इसकी नहीं होगी तो फिर आप लगाते ही रहे ना गिनती, वो सही बैठेगी नहीं गिनती, समझे ना। जहां शुद्ध ज्ञान की कला उदोत होत दिशे, शुद्धता प्रमाण शुद्ध चारित्र को अंश है, ता कारण ज्ञानी सब जानेंगे वस्तु मर्म। हाँ, देखो सर्वथा कर्म जाल का विध्वंस हो जाता है ना, और निरुपाधि आत्म समाधि में विराजित होता है, तो ये परम हंस माने भगवान आत्मा पूर्ण प्रगट माने पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, माने पूर्णमासी हो जाती है, हो गया ना। चलो जहां पर शुद्ध ज्ञान की कला का उद्योत होता है वहां उसकी शुद्धता के परिमाण में शुद्ध चारित्र का अंश अवश्य ही प्रकट हो जाता है। इस कारण ज्ञानी जीव समस्त गे वस्तुओं का मर्म जान लेते हैं और उनके सर्वांग वैराग्य भाव प्रकट हो जाता है। वे ज्ञानी जीव राग देश मोह की अवस्था से सर्वथा भिन्न रहते हैं, इस कारण उनके भूत भविष्य और वर्तमान कालीन कर्मों के जाल का विध्वंस हो जाने से वे निरुपाधि आत्म समाधि में विराजते हैं और प्रगट रूप से परमात्मा बन जाते हैं। वो जो वर्णन पीछे किया था ना जयचंद छाबड़ा ने कि कैसे दोज के दिन वो उगता है और पूर्णमासी वो पूर्ण हो जाता है, ऐसे कौन सी ज्ञान चेतना, तो ज्ञान चेतना सम्मा दर्शन से प्रकट होती है और केवल ज्ञान में पूर्ण हो जाती है, समाप्त नहीं पूर्ण हो जाती है, है ना। अरे स्वामी जी का है पढ़ना, इसके बाद में अपन पढ़ें। देखो इस प्रकार आगामी गाथाओं की के भाव की सूचना देने वाला इस कलश में यही कहा गया है कि देखो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना के माध्यम से भूत भविष्य और वर्तमान कालीन कर्मों से रहित एवं अपने स्वभाव का नित्य स्पर्श करने वाले ज्ञानी जन चारित्र के बल से कर्म चेतना और कर्मफल चेतना से रहित होकर केवल ज्ञानमयी साक्षात ज्ञान चेतना को प्राप्त होते हैं। अभी अपन ने छंद पढ़े वो पढ़े, उनमें कहीं ऐसा प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना शब्द नहीं आए, लेकिन जब भी आचार्य अर्थ करते हैं तो आगे पीछे से मिलान करके वो भूमिका है ना, उन्होंने कहा था ना अगली गाथाओं के भूमिका रूप कलश है जी, तब ये चर्चा अगली गाथाओं में आने वाली है इसलिए वो पहले से उसको ले रहे हैं। अब पढ़ो अगली गाथाएं।
कम्बम जम्पूवकयम् सुहासुहमणेय विद्धर विशेषम तत्तो नियत्तदे अप्पयम् तुजो सोपडे कमणम् कम्मम् जम् सुहम सुहम् जम्य भावम् निबध्यति भविष्यम् तत्तो नियत्तदे जो सोपच्चक्काणम् भवति चेदा जम् सुहम सुहमुदिन्नम् सम्पड्यानेय वेत्थर विशेषम् तम् दोषम् जो चेदति सो खलु आलोयणम् चेदा नित्यम् पच्चक्काणम् कोवदि नित्यम् पडिक्कमदि जोय नित्यम् आलोचेयदि सो उचरित्तम् भवति चेदा अशुभ कर्म अनेक विद है जो किए गत काल में उनसे निवर्तन जो करे वह आत्मा प्रतिक्रमण है बनेंगे जिस भाव से शुभ अशुभ कर्म भविष्य में उससे निवर्तन जो करे वह जीव प्रत्याख्यान है शुभ अशुभ भाव अनेक विद हो रहे संप्रतिकाल में इस दोष का ज्ञाता रहे वह जीव है आलोचना जो करे नित प्रतिक्रमण एवं करे नित आलोचना जो करे प्रत्याख्यान नित चारित्र है वे आत्मा।
आप देख रहे होंगे प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना और चारित्र ये आत्मा ही है। ऐसा भेद नहीं कि आत्मा ने प्रतिक्रमण किया और प्रतिक्रमण अलग आत्मा कहते जो आत्मा अपने भूतकाल के देशों से अपराधों से निर्वृत्त हो गया। अब निर्वृत्त हो गया माने भूतकाल के तो नष्ट ही हो गए वैसे, लेकिन वो उसमें श्रद्धा में से उनका कर्तृत्व उसके दिमाग में से निकल गया कर्तृत्व और भोक्तृत्व। क्यों कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्म चेतना और कर्म फल चेतना कहलाते हैं। यदि वो दिमाग में से नहीं निकले तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना खड़ी रहेगी है ना, तो वो उसके श्रद्धा में से निकलना चाहिए। तो कहते ऐसा वो आत्मा कि जिसके भूतकाल के दोषों के संदर्भ में कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव निकल गया, भाव ही निकलना है अब तो, क्योंकि वो तो सब जो कुछ थे पूरे के पूरे नष्ट ही हो गए, तो वो आत्मा ही प्रतिक्रमण है कहते हैं। वो जब वो प्रतिक्रमण करेगा वो प्रतिक्रमण है वो करता है आत्मा और होने वाली वो क्रिया है। फिर बताएंगे कैसा कैसा करना पड़ता है तो ये बोलना पड़ता है फिर ऐसा बैठना पड़ता है फिर रीढ़ गड्डी सीधी रखनी पड़ती है फिर वो 50 तरह की बात कहते हैं। वो तो श्रद्धा के लेवल की बात है इसलिए वो कहते हैं बस वो आत्मा ही प्रतिक्रमण है। जब वो आत्मा ही प्रतिक्रमण है प्रत्याख्यान है और आलोचना है तो ज्ञानी के चौथे गुणस्थान में सम्मा दर्शन प्रकट हुआ तो उसके नित्य प्रतिक्रमण नित्य आलोचना और नित्य प्रत्याख्यान मौजूद है। प्रत्याख्यान भविष्य के संदर्भ में होता है, प्रतिक्रमण भूतकाल के संदर्भ में होता है और आलोचना वर्तमान के संदर्भ में होती है और होती तीनों वर्तमान में है। वो भूतकाल में होगा ऐसा नहीं, भूतकाल के दोषों से आत्मा के संबंध की अस्वीकृति उसका नाम प्रतिक्रमण है। ये शब्द बना ना प्रतिक्रमण, आप जानते हैं उपसर्ग होते हैं और धातुओं में प्रत्यय होते हैं तो अंत में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं और शुरू में लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जो अंत में लगते हैं वो प्रत्ययों से धातु का अर्थ नहीं बदलता है, एक वचन का बहुवचन हो जाएगा स्त्रीलिंग का पुलिंग हो जाएगा, ये फर्क पड़ेगा। लेकिन उपसर्ग की परिभाषा ये है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते। उपसर्गों के माध्यम से धातु का अर्थ जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाया जाता है। अर्थ माने मीनिंग क्या मतलब है? देखो, गम धातु है, मूलता गम का गच्छ रूप बनता है, गम गच्छ धातु ऐसा बोलते हैं ना अपन। अब गम धातु से गच्छ बन करके गच्छति ये बना ना, तो अब ये कहते हैं कि अब इसमें हमने ती लगाया प्रत्यय तो वह जाता है, उस अन्य पुरुष हो गया। फिर ता लगाया तो वे दो जने जाते हैं, फिर अंति लगाया तो वे तीन बहुवचन में जाते हैं, फिर ऐसे बनेंगे। तो ये अर्थ नहीं बदला, उसी में विभक्तियां जुड़ती नहीं। लेकिन इसमें क्या हुआ, गम माने गम गच्छ माने जाना, और उसमें आ उपसर्ग लग गया तो वो आगच्छ हो गया, तो उसका अर्थ हो गया आना। देखो एकदम उल्टा, गच्छति माने जाता है और आगच्छति माने आता है। तो गम धातु में आ उपसर्ग लगा तो धातु पे उपसर्ग आ गया ना, अगर उसका पूरा अर्थ ही बदल जाए तो इससे बड़ा और उपसर्ग क्या होगा। फिर अब गम आ से आगच्छ हो गया, अब वो आ तो लगा ही रहा, अब एक और लग गया प्रति, तो क्या बन गया प्रत्यागच्छति, तो क्या अर्थ हो गया लौट कर आना। ख्याल नहीं समझे? अब फिर अब उपसर्ग लग गया तो अवगच्छति माने जानना हो गया। तो ऐसे जितने जितने उपसर्ग लगेंगे उसके हिसाब से उनके अर्थ बदलते जाते हैं। तो उसका इसे उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते। तो अब ये जो है ना प्रतिक्रमण, अपन प्रति लगा रहे थे ना प्रति, तो क्रम धातु है वो जो जाने के अर्थ में होती है, चाहे गच्छ गम गच्छ कहो या क्रम कहो, क्रम फिर क्रमति ऐसे बनेंगे रूप। अब क्रम में आ लगा दोगे तो आक्रमण हो जाएगा, अब अलग अर्थ हो गया ना, क्रम माने जाना और आक्रमण माने आक्रमण करना, जाना तो है ही लेकिन आक्रमण करते हुए जाना है, है? और फिर प्री और लगा लो तो प्रत्याक्रमण हो जाएगा, फिर लौट के आना हो जाएगा। तो ये प्रतिक्रमण, तो इसमें प्रति लग गई तो लौट के आना ऐसा अर्थ, प्रतिक्रमण माने लौट के आना, माने जहां हम गलत चले गए थे अब हम आज हमें पता चला तो हम लौट के आ गए, माने वो हमारी गलती सुधर गई। कहने का मतलब ये है अब वो गलती तो उस काल में तो हो गई सो हो गई, और जो कर्म बन गया सो बन गया, और हो सकता है वो हमारा उदय में आकर हमने भोग भी लिया हो, और ये भी हो सकता है सत्ता में पड़ा हो और कल भोग ना पड़े, वो अलग बात है। लेकिन हम तो कहते हैं ना हम तो लौट के आ गए। ऐसा है, एक कांग्रेसी आदमी था वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, समझ गया ना। अब उसने जो कुछ भी किया उस वक्त उसके अच्छे बुरे जो परिणाम आए वे आ गए, और बहुत भोग लिए और बहुत अभी भोगना बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन फिर वो कहेगा कि हम लौट के आगे कांग्रेसी हो गए, माने हमने अपने आप ही पश्चाताप हो गया ना उसका अर्थ, कि हम वहां जाकर के पछताए। हम तो समझते थे ये बहुत अच्छी पार्टी होगी, लेकिन तो सांप्रदाय जो कुछ भी आरोप लगाया, समझे ना। तो ऐसे ही हम जहां चले गए थे वो रास्ता सही नहीं था, और आज हम लौट के वापस आ गए, उसका नाम है प्रतिक्रमण, समझे ना। लौट के वापस आना सही रास्ते पर। अब इसमें ये इसका आवास शाब्दिक अर्थ है, तो हम उसमें क्या कहते, पुरानी जो भी गलतियां होती हैं हमसे वो हम उनको दोहरा देते हैं। अभी क्या करें कि आचार्यों ने बना दिए, क्योंकि हम तो समझते तो है नहीं अपने आप, जो वास्तव में तो हरेक का प्रतिक्रमण, हरेक की आलोचना और हरेक का प्रत्याख्यान अपना व्यक्तिगत चीज है, सामूहिक कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम वहां गए थे, हम गए ही नहीं थे। अब दोनों एक साथ बोलेंगे, अब जब बोलेंगे तो क्या करेंगे, वो सामूहिक ही बनाना पड़ेगा ना, तो फिर लगाएंगे हम कहां से, क्या लगाएंगे। मैंने एक इंद्री का घात किया, फिर मैं एक इंद्री में से मैंने पृथ्वी का घात किया, फिर मैंने जल का घात किया, फिर मैंने अग्नि का घात किया, फिर मैंने हवा के को तकलीफ पहुंचाई, फिर मैंने वनस्पति को तकलीफ पहुंचाई, फिर तृष जीवों को तकलीफ पहुंचाई, एक एक गिनाएंगे क्योंकि सबके हुए हैं है? फिर वो बोलेंगे ना क्या कि मैंने पृथ्वी की खोदी आते आलोचना पाने आता होगा ना पृथ्वी का, फिर कह रहे पानी को जल बलोल लो, फिर आता हवा को मैंने ये डिस्टर्ब किया, फिर अग्नि के साथ मैंने ऐसा किया, फिर वनस्पति के साथ ऐसा किया। वो पंक्तियां आती हैं, मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रही हैं, आलोचना पाठ में बोलते जाते हैं ना, तो वे सामूहिक रूप से हैं। लगभग सबसे बड़ी गलतियां हुई हैं, तुमने भी पृथ्वी पर रहे, हम भी पृथ्वी पर रहे, तुमने जैसे उसके साथ की, कभी खूंटा गाया उसमें, कभी उसे खोदी, कभी तो कुछ किया, जो तुमने किया वो हमने किया, इसलिए एक कॉमन हो गया। पानी के साथ जो तुमने किया वो हमने किया, कुएं में बाल्टी डाली और फिर उसको उठा उठा के पटकी, क्योंकि वो जो काई है अलग हो जाए, पानी निकली तो उसमें जो जीवों को तकलीफ हुई, तो उन्होंने वो चीजें गिना दी। मैं इस कदम माताओं बहनों की मुख्यता से हो गया तो झाड़ू ले जाएगा बुहारी चुटिया तो की जिम्मेदारी, तो तीन इंद्री तो चार इंद्री, तो मक्की मच्छर मारे तो चार इंद्री, पांच इंद्री ऐसे नहीं पांच इंद्री, मेरे कहने का ना उन्होंने धीरे 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 सब बना लिए। ऐसे उन्होंने क्या, मैंने एक जीव एक एक इंद्री को मारा, दो इंद्री को मारा, तीन इंद्री को मारा, चौथे इंद्री मारा, पांच इंद्री, ऐसे वो सब गिनाते रहते। श्वेतांबरों के जो बने हुए हैं सभी सारे प्रतिक्रमण इस तरह से बने हुए हैं, और वे प्राकृत भाषा में है, पुरानी भाषा पाली में प्राकृत में, तो वो अपने किसी की समझ में कुछ नहीं आता क्या हो रहा है, तो उसी मैंने गुजराती में बना दिया है? और फिर वो बोलते हैं मैं पापी हूं, दुष्ट हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा ऐसा बोलो गलती ऐसे। तो वहां पर अध्यात्म सिद्धि सर्कल में हम जाते हैं हर साल बम्बई में, तो वहां ने एक पद्धति बना रखी, जब प्रवचन खत्म होते हैं तो अंत में वो बोलते हैं। श्रीमद के बनाए हुए दो हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो वो खड़े होकर के जो आधा पेज का है वो बोलते हैं, तो वे बोल के खुद सुनाते हैं, सब लोग सुनते हैं। तो अनेक अनेकांत वो छोटा था तो हमारे साथ वहां गया प्रवचन में, वहां बैठा सुना हुआ इसने, क्योंकि पापा साथ में होंगे। फिर वो बोलते थे हूं पापी छू, हूं दुष्ट छू, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा वो दिनेश भाई बोलते थे स्पीकर पर। तो जाकर दादा एक क्या कि दिनेश भाई पापी है? मैं कहा नहीं, तो वो बोल रहा था ना, कल भी बोला और आज भी। मैं ये बात कहकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो सब हमारा ऐसा मशीन जैसा काम हो गया, क्या कि वो कोई नहीं समझ, जब बच्चा था तो उसने सही बात सोच ली, वो कह दी, अब बाकी कोई सोचता ही नहीं है कि मैं दुष्ट हूं, मैं पापी हूं। अब ऐसा कह रहे हम कि तुम बहुत दुष्ट हो, तुम बहुत पापी हो, कुछ ना कह रहे कि तूने कहा रोजीना, हमने सुना कोई वर्षों हो गए, 30 बरस हो गए सुनते सुनते, हर साल रोजीना सुनते हैं, आज सुनते हैं, इतनी दफे क्यों सारी सभा के सामने स्वीकार किया और आज हम कह रहे तो अकड़ रहे। यानी वो इतना नीरस हो गया, मैं कहना चाहता हूं जान निकल गई उसमें से। इसलिए मैं कहता हूं सबसे कि सचमुच तुम्हें भगवान की स्तुति करनी है, सचमुच प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना है, तो छोड़ो हमारे तुम्हारे लिखे, तुम अपनी भाषा में बोलो। मंदिर में जाकर के प्रभु पतित पावन नहीं पढ़ना, घबराना नहीं, सजल गए गायक नहीं बना, अपने अपने मुंह से बोलो ना कि हम तो भी पद बना नहीं बनाओ, पद ना गद्य में बोलो। तुम अपने मम्मी से रोटी चाहिए, दाल चाहिए, खाने चाहिए, तो प्राणी कभी भी कविता जाके बोलते हो, तो कविता बोलो मम्मी मेरे को रोटी चाहिए। सिनेमा में गीत बदलेगा, मुझे क्या खा क्या दे दे मम्मी, क्या करवा दे, وہاں گھما دے گھما دے. لیکن وہ چیزیں بھی جب ایکچوئل میں بچے اپنی ماں سے مانگتے ہیں تو وہ بھی گا کے نہیں بولتے ہیں. گا کے نہیں بولتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. مجھے یاد ہے سب سے پہلے جب ہم نے رامائن پڑھی تھی سنسکرت کی, تو اس میں آتا تھا اہم گمسیامی مہابنم پریے پریا ہی وستب یہی وبھاونی. مانا رام چندر جی سیتا جی سے کہہ رہے ہیں جا کر کے کہ اہم گمسیامی مہابنم پریے, ہے پریے میں بھینکر جنگل میں جا رہا ہوں پتا جی کی آگیا سے, اور تویا ہی وستب یہی وبھاونی کہ آپ کو یہیں رہنا چاہیے اور ساس سسر کی سیوا کرنی چاہیے. تو اس میں لکھا سب ایسا کیا. تو ہمارا چکرورتی پروفیسر پڑھاتا تھا تو وہ کہتا کہ یہ کبیتا کبیتا نہ بولتی ہوگی, رام چندر جی سیتا سے بات کرتے ہوں گے تو کبیتا نہ بولتے ہوں گے, کیونکہ بس پدیہ میں ہی لکھا جاتا تھا, گدیہ میں تو لکھا نہیں جاتا تھا. آپ نے ناٹک پرانے زمانے کے دیکھے ہو نا, تو یہ ناٹک بھی سب کبیتا نہیں ہوتے تھے. اسٹیج پہ آتے تھے نائک نائکا تو وہ سب چھند ہی بولتے تھے کیا, وہ چھندوں میں ہی سنواد چلتے تھے, وہ رٹ لیتے تھے اور وہ سنواد بولتے تھے اور سب لوگ آرام سے دیکھ کے سنتے تھے. یہ گدیہ کا تو بعد میں آیا کیونکہ یہی ترک سے کہ کہیں ہوتا ہی نہیں ہے ایسا ایکچوئل. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سب پوجا پاٹھ ایسا ہی ہو گئے. ایک دفعہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ تم سدھ چکر ودھان اپنے من سے کرو اور کوئی نہیں لینا دینا نہیں, تم بولو نا بھگوان کی کوشش سدھی ستی, دو پاک نہیں بنیں گے. پھر اتنا لمبا چوڑا ودھان کہاں سے آ گیا, کیوں بولو نا بھگوان کی ستی کرو نا, کراؤ ارگ بناؤ چڑھاؤ جو بھی کرنا ہے کرو, یہ ستیاں ہٹا دو اور مندر میں جا کے خود بولو. اور سچ مچ جب ہردے کی بات بولتے ہو تو آج تم گدے میں ہی بولتے ہو, یہ بھگوان میرے بچے کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اتنی سنگت, تو وہ بالکل گدے میں بولتے ہو چپ چاپ, وہ بغیر والا سن بھی نہ لے رہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ میں نے بھگوان سے ایسا مانگا ہے. خیال میں آئی نا, دوسروں کی کبھیوں کی بولنے میں اپنے کیا بگڑتا ہے, کہتے ہیں ہمارا تھوڑی ہم نے تھوڑی کچھ مانگا. چھو مانی بھی پرانی گاتھا لکھ لکھ کر کے بولتے کیا, اپنے اپنے ہردے کے شبد لکھو نا ایکچوئل, پھر ہزاروں نہیں ڈالو گے, پھر لمٹیڈ ہی دو چار ہی ڈالو گے, پھر سوچ سوچ کے ہی ڈالو گے کیا غلطی بھیا کس غلطی کی معافی مانگنی ہے. تو سب چیزیں بے جان ہو گئی ہماری اس پد میں کبتا میں دوسروں کی لکھی بولنے سے, ایکچوئل نہیں رہی, ایکچوئل جیون میں آنا چاہیے. ارے نے یہ گت کال میں یہ پرتکرمن ورتمان میں اپنا چھند تو پڑا تھا نا, تو اس میں یہ آیا, پھر ایک دفعہ پڑھو اچھی طرح سے, اب دھیان دینا ذرا
پڑھو. شبھ اشبھ کرمانے کبھی ہے جو کیے گت کال میں ان سے نورتن جو کرے وہ آتما پرتیکرمن ہے. بنیں گے جس بھاو سے شبھ اشبھ کرم بھویش میں اس سے نورتن جو کرے وہ جیو پرتیاخیان ہے. شبھ اشبھ بھاونے کبھی ہو رہے سمپرتی کال میں اس دوش کا جاتا رہے وہ جیو ہے آلوچنا جو کرے نت پرتیکرمن ایوم کرے نت آلوچنا جو کرے پرتیاخیان نت چارتر ہے وے آتما.
آتما ہی چارتر ہیں جو روزانہ پرتیکرمن کرتے ہیں پرتیاخیان کرتے ہیں. مانے کیا پرتیکرمن, پرانے جیون میں جو غلطیاں ہوئیں وہ غلطیاں کرنے لائق نہیں تھی, ایسا پشچاتاپ پوروک اپنی شردھا میں ایسا بیٹھاتے ہیں भविष्य में ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी, मेरी प्रत्याख्यान हो गया है। अब वर्तमान में भी हो रहे हैं, मैं उसकी भी माफी मांगता हूं। ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान तीनों हो गई। और ऐसा ही आत्मा स्वयं ही चारित्र है, ऐसा नहीं चारित्र अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है, उसने उसे धारण किया। अब कल इसके अपन आत्मख्याति पढ़ेंगे। अब ये सूचना देनी है ना शांति जी, आपके दम में किया है ना।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।